Now I am reading from my other novel, Antim Aranya. अपने कमरे में लौटने से पहले मैं कुछ देर टहलने के लिए निकल पड़ता। हवा में खुनकी होती और आकाश खुला होता। तारे इतने ज़्यादा होते और इतने चमकीले कि लगता हाथ उठाकर उन्हें छुआ जा सकता है। पेड़ों के ऊपर सफ़ेद धुंध के फाये दिखते रहते, शांत, निश्चल, निस्तब्ध। उनके नीचे चलता हुआ मैं भूल जाता कि मैं किस लिए हूँ, अपने घर से इतनी दूर क्या कर रहा हूँ। हवा में सांस लेते हुए देह हल्की सी जान पड़ती और आशा बंधने लगती। किस चीज़ की आशा और किसके लिए, ये कुछ समझ में नहीं आता था। मन खाली रहता तो उसमें कुछ भी आ सकता था। पगडंडी पर चलते चलते मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, अंधेरे में उनकी कॉटेज एक चमचमाती डिबिया से दिखाई देती थी, जिसे कोई भूले से बीच में जंगल में छोड़ गया था। हर कमरे की बत्ती जल रही थी, 3 बरस पहले की तरह जब मैं वहाँ पहली बार आया था। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वही हरी काट की खिड़कियाँ, बैडमिंटन का लॉन, पत्थर की बेंचें, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ अब वहाँ नहीं थी वही जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। क्या वो इसीलिए कब्र में जाते हुए हंस रही थी, जैसे मुझसे कह रही हों, देखो तुम्हें बुलाकर मैं जा रही हूँ। या उन्हें डर था कि कहीं मैं अकेले पहाड़ पर उब तो नहीं रहा। उबने का सवाल ही नहीं था। दिन कैसे शुरू होता था, कब रात चली आती थी, मुझे पता नहीं चलता था। जब सुबह मुरलीधर का लड़का चाय लाता था तब मुझे पता चलता था ये दिन है, और शाम को जब स्वयं मुरलीधर लालटेन लेकर आता तो ये नहीं लगता था कि कोई नया दिन शुरू हुआ है। सिर्फ ये लगता था कि पुराने दिन की एक नई शुरुआत है, जैसे दिन एक ही है और मैं उसे कभी ऊपर से कभी नीचे से नई नई तरफों से देख रहा हूँ। जब कुछ लोग कहते हैं कि वे एक दिन के बाद दूसरे दिन में रहते हैं तो शायद असल में उनका मतलब यही होता है कि वे एक ही दिन में रहते हैं जो चलता रहता है। जब मैं छोटा था तो एक बार मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ एक छोटे से कस्बाती स्टेशन में गुजारी थी। वहाँ मेरे चाचा स्टेशन मास्टर थे। मैं देखा करता था कि रेल के डिब्बे जो पुराने हो जाते थे उन्हें एक छोटी लाइन पर खड़ा कर दिया जाता था। रेलगाड़ियाँ आती और उन्हें छोड़कर धड़धड़ाती हुई आगे बढ़ जाते। उन खाली डिब्बों में हम लुका छिपी का खेल खेलते थे। कभी कभी वहाँ हमें अनोखी चीज़ें मिल जाती। किसी आदमी का मफलर, सीट के नीचे दुबकी किसी लड़की का सैंडल। एक बार तो मुझे एक मुसाफिर की फटी पुरानी नोटबुक भी मिली थी जिसमें 5 रुपये का टिकट नोट दबा था। लेकिन सबसे विस्मयकारी स्मृति स्वयं रेल के उस डिब्बे की थी जो रेल की पटरी पर खड़ा हुआ भी कहीं नहीं जाता था। अगर उन्होंने वो विज्ञापन नहीं दिया होता तो आज भी मेरा डिब्बा उस पहाड़ी कस्बे की ब्रांच लाइन पर लगा रहता। कभी कभी कितनी छोटी चीज आदमी की जिंदगी बदल देती है। मैंने दिल्ली के स्टेट्समैन में वो विज्ञापन देखा था जिसकी कतरन आज भी कहीं मेरे कागजों में पड़ी होगी। मुझे अब उसकी भाषा भी ठीक से याद नहीं। अगर कोई चीज़ याद रह गई है तो अपने भीतर का विस्मयकारी कौतूहल जो उस छोटे से विज्ञापन ने मेरे भीतर जगाया था। पहली चीज़ तो यही थी कि ये विज्ञापन एक महिला ने दिया था जिसने किसी पढ़े लिखे युवक की मांग की गई थी जो उनके रिटायर्ड पति के साथ हर रोज़ कुछ घंटे बिता सके और उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वे ज़रूरतें क्या होंगी इसका कोई हवाला विज्ञापन में नहीं दिया गया था। इसके एवज में आवेदनकर्ता को उसकी नियुक्ति पर मुफ्त की बोर्डिंग और लॉजिंग ही दी जा सकेगी। मेरे कौतूहल का एक कारण ये भी था कि पत्र व्यवहार के लिए उन्होंने घर के पते की जगह बहादुरगंज के पोस्ट ऑफिस का पता दिया था। बाद में जब मैंने उनसे इसका भेद जाना चाहा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगे, जैसे कि उनकी आदत थी। कहने लगी, आप क्या सोचते हैं? अगर मैं इन्हें मीरा साहब को पहले से बता देती तो क्या वो आपको यहाँ अपने घर में पैर रखने देते? मैं उन्हें आखिर तक अंधेरे में रखना चाहती थी। अंधेरे में? मैं उनके बारे में नहीं जानता, सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ कि जिस दिन मैंने वो विज्ञापन पढ़ा मैं अंधेरे से बाहर निकल आया था। मैं जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसे कुछ लोग क्राइसिस ऑफ मिडिल एज कहते हैं। ये मैं अब सोचता हूँ, मैं उससे बाहर निकलना चाहता था। अब हंसी आती है, क्या कोई अपने तन की त्वचा और मन की मैल से बाहर आ सकता है? कहीं भी जाओ ये दोनों चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, यहाँ आने का मतलब एक दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना नहीं था, ये अपनी ही दुनिया में अपने को दोबारा पाने का प्रयत्न था। मुझे नहीं मालूम मैं इसमें कितना सफल हो पाया हूँ, लेकिन कभी मैं अपनी कोठरी के बरामदे में बैठा हुआ बारिश की बौछार देवदारों पर गिरती हुई देखता हूँ तो लगता है कि मेरी मिडिल एज का संताप पहाड़ की अविरल शांति में घुल गया है। अगर शांति का मतलब लगी बधी लीक के साथ जीना है, जहाँ ना किसी अचानक खुशी का झटका लगता है न किसी खतरे का झोंका आता है। काम भी ज़्यादा नहीं है, हफ्ते में 2 बार मेरा साहब ही कॉटेज में जाता हूँ। वो जो कुछ कहते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, उसे नोट कर लेता हूँ। बीच के खाली दिनों में उन्हीं नोट्स में ज़रूरी कारछांट करता रहता हूँ ताकि जब कोई तीसरा आदमी उन्हें पढ़े तो वे बिल्कुल ही अनर्गल ना जान पड़े। भला इस जगह तीसरा आदमी और कौन हो सकता है सिवाय उनकी बेटी के, जो महीने में कभी कभार एक वीकेंड गुजारने के लिए यहाँ आ जाती है। ये वही है जिसने पहली बार मिलना जिससे पहली बार मिलना उनकी माँ की कब्र पर हुआ था, सिमिट्री में खुली कब्र के आगे। वही जिसकी मृत खोकर से मैंने उनकी हंसी सुनी थी, जिन्हें दफनाया जा रहा था। जैसे वो कह रही हो, देखो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था और मैं जा रही हूँ। क्या वो सचमुच चली गई हैं? मैं खाली कमरे में बाहर हवा का चलना सुनता रहता हूँ। मुझे उनका याद आना एक पेज जैसा लगता है, घर के भीतर बाहर कोई भटकती थी चीज़ नहीं, आत्मा नहीं, इतनी भरी साफ चहचाती दे अपने में संपूर्ण जान पड़ती थी। वो मीरा साहब की दूसरी पत्नी थी, उम्र में उनसे बहुत छोटी। जब मैं पहली बार आया था तो मैं समझा था कि वो उनकी बेटी हैं। क्या पता था कि वो पहले से ही एक बेटी की माँ बनकर आई हैं। जिस दिन मैं यहाँ आया था वो बैडमिंटन खेल रही थी, उनके साथ एक दूसरी महिला थी और मीरा साहब कोर्ट के बाहर बैठे थे। उनके आगे मेज लगी थी जिस पर पानी का जग और शीशे के गिलास रखे थे। कुली सामान लिए मेरे साथ खड़ा था। 12 घंटे की बस यात्रा के बाद धूल गर्द पसीने में लदा फंदा मैं पहाड़ी कॉटेज के उस दृश्य को एक फिल्म की तरह देख रहा था। उस दिन भी हवा वैसे ही चल रही थी जैसे आज। हवा में बहती हुई शटल कॉक कोर्ट की बाउंड्री को लांघ कर वहीं चली आई जहाँ मैं खड़ा था। वो बिल्कुल मेरे पैरों के सामने आकर गिर गई थी, सफ़ेद चिड़िया। वो भागती हुई मेरे पास आई और मैंने चिड़िया उठाकर उनके हाथ में पकड़ा दी। वो एक क्षण अपलक मुझे घूरती रही, फिर मेरे कुली की तरफ देखा, फिर दोबारा मेरी तरफ, और तब उन्होंने कुछ हैरत में कहा, क्या तुम वही हो, स्टेट्समैन वाले उम्मीदवार? उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उनके पीछे मीरा साहब खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अपनी पत्नी के अधूरे वाक्य और अपनी मुस्कुराहट के बीच उन्होंने मेरे परिचय को पूरा कर दिया। हाथ पकड़कर वो कुछ आगे चले आए जहाँ बैडमिंटन का कोर्ट था। वहाँ एक विदेशी महिला अब भी रैकेट हाथ में लिए खड़ी थी, बहुत छोटी कद की लेकिन सख्त, चौड़ी काठी, सफ़ेद बाल और बड़ी बनेली नीली आँखें। यन्ना जी हैं, लेकिन वो अभी आपसे हाथ नहीं मिलाएंगी जब तक अपना गेम पूरा नहीं कर लेंगी। जब तक गेम पूरा नहीं हो गया मैं कोर्ट के किनारे बैठा रहा था। मिसेज मेहरा एक तरफ और दूसरी तरफ मेहरा साहब और विदेशी महिला। कोर्ट के पीछे पेड़ों की तिरछी लाइन जो पहाड़ पर खिंचती हुई आकाश तक चली गई थी, सूरज की आखिरी रोशनी में सुलगती हुई। शाम का वो धुंधल का बहुत चमकीला सा हो गया था, तारे निकल आए थे। उनकी शटल कॉक की खरखर आवाज कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ से मेरे पास चली आती थी। मिसेज मेहरा अकेली होकर भी गीत गई थी। मेरे पास आकर कुर्सी पर बैठ गई तो तारों के उजास में उनके सुंदर तपे हुए चेहरे को देखकर कौन कह सकता था कि 2 साल बाद मैं उनकी कब्र के सामने खड़ा होऊंगा।